आज मधुबन में हम सभी को बहुत ही एक श्रेष्ठ मौका मिला है, किस लिए? क्लास करने के लिए या लेन देन करने के लिए? क्लास तो आप सभी रोज करते हैं ना, सुबह को भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, और आज बाबा ने भी खास किन किन बातों पर ध्यान खिंचवाया हमारा? आपका ध्यान गया सारे दिन बुद्धि पर? बुद्धि गई, बाबा ने कहा ज्ञान बुद्धि में उछलना चाहिए, तो आपकी बुद्धि में उछला ज्ञान? उछला? कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, हाँ या ना? अच्छा, उछलता है इसलिए आए हैं। उछलना भी चाहिए, क्योंकि जो भी बाबा हमें बताते हैं उन सब बातों को हमको अपनी रीति से इसके ऊपर विचार सागर मंथन करके, इसके ऊपर अभ्यास करके उसको अपना बनाना है। बाबा कहते हैं ना कि हमको तोता जैसे नहीं बनना है, ज्ञान सुना और किसी को सुना दिया, हमें भी अच्छा लगा, लेकिन ज्ञान को अपनी ओनरशिप, यानी है भगवान का ज्ञान, हमारी स्मृति में ये बात रहे कि है भगवान का दिया हुआ ज्ञान, लेकिन हम जब किसी को सुनाए तो उसको भासना आए कि ये सुनी सुनाई बात नहीं सुना रहे हैं, लेकिन इन्हें सुनी है, उसको जीवन में लाया है, तब इनको अधिकार है हमें सुनाने का। दादी ने हमको हमेशा सिखाया कि ज्ञान का विचार सागर मंथन करने के लिए अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए। कोई भी बात है, बाबा ने क्यों ऐसे बोला, ये कोई डाउट की बात नहीं है। बहुत साल पहले, अभी तो बहुत दिन हो गए, हमको ये चांस नहीं मिला है, लेकिन हम दादी के साथ बहुत ही प्रश्न उत्तर करते थे, सभा में प्रश्न उत्तर करते थे, और दादी खास बिठाती थी, बैठो पूछो, प्रश्न पूछो, इसलिए कि हमारे भी प्रश्न पूछने में भी बुद्धि चले, और हमको ही प्रश्न पूछना है और हमको ही उसका उत्तर निकालना है। सिर्फ मुरली खुल के नहीं कि बाबा ने ये कहा ये कहा ये कहा, लेकिन अपना विचार चला के, अपने अनुभव के अंदर जाके, अपने जो अनुभव है उसको भाषा में लाना है, उसको लैंग्वेज देना है। एक है ज्ञान, दूसरा है अनुभव। लेकिन कई बार आजकल खास देखते हैं कि औरों को बाहर जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो क्या चाहिए उनको? उनको अनुभव चाहिए, और अनुभव तब उनको होगा कि हमने जो अनुभव किया है उस अनुभव को हम लैंग्वेज दें, यानी भाषा दें, उसको आर्टिकुलेट करें, तभी उसको ज्ञान जचेगा, उसको भी वो एनर्जी मिलेगी। जब ज्ञान अनुभव में बदल जाता है तो ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं रहता है, ज्ञान वाइब्रेशन बनता है, उसकी एनर्जी बनती है, एनर्जी जिस एनर्जी से हमको भी शक्ति मिलती है, और उस एनर्जी और वाइब्रेशन से औरों को भी शक्ति मिलती है, उनों को भी हम सुनते समय अनुभव होता है। तो बाबा खास हमें कहते हैं ज्ञान हमारी बुद्धि में उछलना चाहिए। क्यों? इसलिए कि बुद्धि सबसे बड़ी सौगात हमें भगवान देते हैं, एक तो है ज्ञान, लेकिन ज्ञान से हमें बुद्धि प्राप्त होती है। जो सोचने वाली, एनालाइज करने वाली, जज करने वाली, वो तो बुद्धि का काम है ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो बुद्धि जिस बुद्धि में दिव्यता आती है, ज्ञान सुनते ही हमारी बुद्धि में दिव्यता आती है। दिव्यता किस हिसाब से? वो समझ आती है, और बाबा हमें क्यों कहते हैं कि ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि जितना जितना सबसे पहला बुद्धि का बुद्धि की जरूरत है हमारी बुद्धि को साफ करना, साफ और सब बातों से, नेगेटिव बातों से, औरों की बातों से, पास्ट की बातों से, ये सब बुद्धि में इसको कहते हैं कंटामिनेशन। कंटामिनेशन माना अशुद्ध बात शुद्ध चीज में मिल जाए, तो जो शुद्ध चीज है, शुद्ध बात है, वो अशुद्ध हो गई, उसको कंटामिनेशन कहा जाता है। और इस बारी हम क्या खास इस बात का सोच रहे हैं कि हमारी बुद्धि यानी कि हमारी स्मृति एक प्रकार का इंक्यूबेटर बनना चाहिए। इंक्यूबेटर समझते हैं ना, इंक्यूबेटर माना वो जो बच्चा जब प्रेमच्योर पैदा होता है तो उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं, वो छोटा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर एकदम साफ वातावरण होता है, कोई भी बाहर के जीव जंतु या मिट्टी उसके अंदर नहीं जाए, वो इतना शुद्ध वातावरण होता है बच्चे के लिए, तो वो बच्चा उस इंक्यूबेटर के अंदर बड़ा होता है अपने आप, और उस वातावरण के अंदर एकदम जैसे के उस बच्चे को जैसे के प्राप्ति का अनुभव होता है। तो इसी प्रकार से हमको भी हमारी बुद्धि को यानी कि हमारी स्मृति को एक इंक्यूबेटर बनाना है, जिस इंक्यूबेटर के अंदर बाहर की कोई भी चीज, देह अभिमान की कोई भी बात उस बुद्धि को असर न करे। अगर देह अभिमान की बात बुद्धि को असर करती है, पास्ट की बात कोई बुद्धि को असर करती है, या भविष्य के चिंता की बात कोई बुद्धि को असर करती है, तो उस बुद्धि को कंटामिनेटेड बुद्धि कहेंगे, यानी कि अशुद्ध बुद्धि कहेंगे। और उस अशुद्ध बुद्धि में भगवान का ज्ञान समा नहीं सकता है, यानी कि कंटेनर, ये जो इंक्यूबेटर है ना, एक प्रकार का कंटेनर है, यानी कि एक प्रकार का वैसा घड़ा कहो या पतीला कहो, कुछ भी बात जिसके अंदर आप कुछ चीज रख सको। तो हमारी बुद्धि को भी हमें एक कंटेनर बनाना है, जिस कंटेनर के अंदर शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध पहचान, शुद्ध समझ आए, और उसके लिए हमको ज्ञान का उपयोग बार बार बाबा ने क्या कहा, किस लिए कहा, क्यों कहा, इसका मतलब क्या है, अगर इस प्रकार से हम अपने आप को प्रश्न पूछते हैं तो बुद्धि चलती है। और कहा जाता है कि स्थूल रूप से भी हमारा जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन के अंदर हमारे संस्कार जो है, उसकी आदतें हैं, हमारे जो नेगेटिव अनुभव हैं, फीलिंग्स हैं, उस अनुसार जैसे कि ब्रेन वायरिंग होती है उसकी। और कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे परिवर्तन आए तो भी परिवर्तन नहीं आता है, क्यों? हम चाहते हैं, बहुत इच्छा है कि हमारे में परिवर्तन आए, ये बात बदल जाए, लेकिन क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि हमारे फिजिकल ऑर्गन ब्रेन को भी एक आदत पड़ गई है। अगर हमारे में कोई नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, तो वो इस प्रकार की केमिकल्स ब्रेन में पैदा होती हैं। अगर तनाव है या कुछ गिल्टी फीलिंग की बात आती है, या गुस्सा है, या चिड़चिड़ापन है, कोई भी ये सब जो बातें आती है ना, उससे हमारे अंदर वो नेगेटिव केमिकल्स पैदा होते हैं, वो केमिकल्स को भी ब्रेन को आदत पड़ जाती है उस केमिकल को फील करने की। जैसे कोई दारू पीने वाला है या कोई ड्रग्स लेने वाला है तो पीता है तो उसको आदत पड़ जाती है। आदत क्यों पड़ती है? बुद्धि से बेचारा समझता भी है कि मुझे नहीं पीना है, ये मेरे लिए नहीं अच्छा है, लेकिन एक बारी आदत पड़ गई तो वो शरीर भी वो जो दारू की जो केमिकल्स हैं उससे आदत ही हो जाता है। उस बेचारे को नहीं पीनी है तो भी उसका शरीर मांगेगा उससे, तो न चाहते हुए भी फिर उसमें जो शक्ति है, मानसिक शक्ति है, वो मानसिक शक्ति कम हो जाती है और फिर शक्ति कम होने के कारण ये पी लेता है, चाहे सिगरेट है कोई भी बात है। चलो हम तो उन सब बातों से दूर हो गए, लेकिन हमारे में भी उस इक्विवेलेंट, ये जो हमारे भी नेगेटिव आदतें हैं, ये सब आदतें भी अंदर हमारे शरीर में जैसे कि भर गई हैं। आदत इसमें हम ना चाहते हुए भी ही उस आदत के मजबूर हो जाते हैं। हमें याद आता है कभी भी कोई बात होती थी ना तो दादी हमेशा कहती थी, हमको आदत देने के लिए कहती, भूल जाओ उस वो मजबूर है, उस आदत से मजबूर है, यानी कि उसमें वो शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को मुक्त कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ये जो बात बताई ना कि ये स्मृति हमारी शुद्ध बनानी है, स्मृति हमारी श्रेष्ठ बनानी है, तो सबसे पहले स्मृति श्रेष्ठ बनती है ज्ञान की बातें सोचने से, विचार सागर मंथन करने से। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। अभी ये तो हम समझते हैं कि हाँ हमको करना है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, तो इसमें क्या विचार सागर मंथन करेंगे? आत्मा वास्तव में है क्या चीज? हम सुनते तो आते हैं, हम बहुत सुनते हैं और हम समझते हैं कि हम समझते हैं, लेकिन समझ क्या है? आत्मा बाबा कहते हैं ज्योति बिंदु स्वरूप है। एक बारी मुझे याद है बाबा ने यह भी बोला था कि ज्योति बिंदु को याद नहीं कर सकते हैं। ज्योति बिंदु को याद कर कैसे याद करेंगे? याद तब आएगी जब उस ज्योति बिंदु के गुण को याद करेंगे और उस गुण के वाइब्रेशन, उस गुण के गुण की एनर्जी क्या है, उसको हमें अपने मन के अंदर पैदा करना है। शांति, आत्मा का स्वरूप शांत है, मतलब है तो बड़ी सिंपल बात, एकदम सिंपल, इतनी सिंपल है इस कारण से हम कर नहीं सकते हैं। अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात होती ना तो हम कुछ बुद्धि चलाते, कुछ बात करते इसके बारे में, लेकिन एक्चुअली इट इज सो सिंपल और सहज। बाबा कहते हैं कि राजयोग सहज है और सचमुच सहज है, इतना सहज है इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। अगर आपको कहे ना मेहनत का कुछ काम है तो आप अच्छी तरह से मेहनत कर सकते हैं ना, कोई भी स्थूल काम है मेहनत का काम है। कई होशियार होते हैं जिनकी बुद्धि अच्छी होती है, किताब लेकर बैठ जाएंगे, कुछ भी है किताब को पढ़ेंगे, उससे बहुत कुछ बातें निकालेंगे, वो तो हम बहुत सहज कर सकते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा क्या है? ज्योति स्वरूप है लेकिन एकदम सिंपल। आप बैठ जाओ, शांत स्वरूप होकर बैठ जाओ और कहां भी बुद्धि न जाए,
हो गया,
दिस इज इट,
यही है आत्म अभिमानी स्थिति, यही है। मधुबन क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मधुबन में नेचुरली आत्म अभिमानी स्थिति रहती है। मुझे अभी भी याद है जब पहली बारी में मधुबन आई 82 में फरवरी में, ज्ञान अभी सप्तम ज्ञान लिया था तो 2 साल पहले, लेकिन सप्तम 3 मास पहले ही हमने क्लास में जाना शुरू किया था। वो ज्ञान लिया था 2 साल पहले उसके, लेकिन क्लास में नहीं जाते थे, इसलिए हम नहीं समझते हैं कि हम तब से ज्ञान में आए। ज्ञान में तब आए जब 81 से क्लास में जाना शुरू किया। क्लास में जाते थे, मुरली भी सुनते थे, लेकिन प्रश्न घड़ी घड़ी यही प्रश्न, आत्मविमानी स्थिति क्या है, आत्मविमानी स्थिति क्या है। और मुझे याद है सुदेश दीदी के साथ में बैठी, मैंने कहा मेरे को आत्मअभिमानी स्थिति का अनुभव कराओ, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो बैठ जाओ, तो हम बैठ गए। तो उन्होंने मेडिटेशन कमेंट्री कराना शुरू कर दिया, और सुदेश दीदी को अगर आप जानते हो तो वो तो मेडिटेशन कराते कराते करा करते ऊपर चली गई, और मैं तो वहीं बैठी रही और मैं देखने लगी। मैंने कहा अभी क्या होगा, अभी कब ये पूरा होगा, मुझे तो कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर भी 3 मास ऐसे चले गए। फिर अभी भी मुझे याद है मधुबन आते ही, मधुबन के आंगन में पांव रखते हुए ही, मधुबन निवासियों को मिलते हुए ही ऐसा अनुभव हुआ कि अगर आत्म अभिमानी स्थिति है तो ये है नेचुरली जैसे कि किसी को मिलो तो प्यार से मिलते हैं, लगे भी नहीं कि ये पहली बारी मिल रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कि सदियों से एक दूसरे को पहचानते हैं, लगता है ना। चाहे आप सेवादारी बनके सेवा किसी के साथ कर रहे हो या मधुबन के भाई बहनों को मिल रहे हो, किसी को भी मिलते हैं, ब्राह्मण परिवार में आते हैं तो ऐसे लगता है कि सदियों पुराना हमारा संबंध है। क्यों? क्योंकि हमारी स्मृति, हमारी दृष्टि नेचुरली आत्म अभिमानी की हो जाती है। लेकिन जब योग में बैठते हैं तो क्या करते हैं? मेहनत मेहनत और मेहनत, और फिर कहते हैं नहीं हो सकता है और मुश्किल लगता है, वास्तव में है सहज। तो इसी प्रकार से बाबा ने आज भी कहा ना, याद ही है और कुछ है ही नहीं। और याद किसको करते हैं, याद किसको करेंगे, याद अगर किसको करेंगे उसको याद करेंगे जिनको आप जानते हो, जिनको पहचानते हो, जिनको देखा है, जिनको सुना है, जिनको समझा है, जिनके साथ संबंध है, जिसको फील किया है, उसको ही तो याद करेंगे। और यहां बैठे ही कि बाबा के पास आए ही क्यों आए, इसलिए क्योंकि बाबा को जानते हैं, बाबा को पहचानते हैं, बाबा को देखा है, भले इन आंखों से नहीं देखा है लेकिन पहचान की आंख से देखा है ना। ये भी हमें याद आता है पहली बारी अव्यक्त बाप दादा के साथ मुलाकात, हम 20-25 ही दबे विदेशी बैठे थे बाबा के सामने उस समय, मेडिटेशन हॉल की बात है, और बाबा की दृष्टि ऐसे ही जैसे घूम रही थी, और एक ही सेकंड बाबा की दृष्टि को पास होने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड, लेकिन 1 सेकंड ही जैसे कि इटर्नल सेकंड बन गई, सदा काल की 1 सेकंड बन गई। क्यों? क्योंकि उस सेकंड में अनुभव हुआ कि ये मेरा है और मैं इनकी हूं, 1 सेकंड, और वो 1 सेकंड जीवन परिवर्तन कर लिया। भले फर्स्ट टाइम मधुबन आना हुआ था लेकिन ये निर्णय करके नहीं आई थी मैं कि हाँ हमको तो बीके बनना है, देखते हैं अच्छा है, सुना बहुत है, अच्छा लग रहा है, मधुबन की बातें बहुत सुनी थी इसलिए मधुबन को देखने के लिए आए। तो अव्यक्त बाप दादा के साथ मुलाकात में भी बाबा ने कहा कि योगी आत्मा हो ना, मैंने कहा नहीं। तो बाबा ने कहा कि योग कैसे लगता है पता है, मैंने कहा नहीं। फिर तो बाबा ने कहा कि महिमा करो, बाप की महिमा करो, अगर याद करनी है तो बाप की महिमा करो। और महिमा से क्या होता है कि हमारे में और बाबा में जो समानता की बात है ना, वो हमारे में पैदा होती है। और बाबा की वो समानता की बातें, बात बाबा के गुण हमको दिखाई देते हैं। उसको इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं, उसको कहते हैं रेजोनेंस। याद से याद बाबा कहते हैं मिलती हैं। क्यों याद से याद मिलती हैं? क्योंकि जो हम बाबा के, हम परमात्मा की संतान आत्मा हैं, तो जैसे परमात्मा हैं वैसे ही आत्मा हैं, उनसे भिन्न नहीं है। भले हम भूल गए हैं लेकिन हम परमात्मा से भिन्न नहीं हैं, हम उनके जैसे ही है। तो पहले आत्मा को इस स्थिति में स्थित करना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप परमात्मा के जैसे ही हूं। इंग्लिश में हम कहते हैं, वैसे हम भक्ति में भगवान को ऐसे याद करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल, यानी कि परमात्मा ऊपर है हम नीचे हैं, तो इस प्रकार से याद करते हैं। और अभी मेडिटेशन सिखाते हैं तो हम उनको कहते हैं वर्टिकल याद, यानी कि ऊपर ऐसे देख के याद नहीं करते हैं, बाबा को बाजू में बैठ के याद करते हैं। बाजू में कौन बैठ सकता है? हमें याद है दादी जी, बड़ी दादी, जब अव्यक्त बाप दादा ओम शांति भवन में आते थे, चाहे मेडिटेशन या यहां भी, हमारे ज्ञान में आने के बाद यहां भी बाबा आए थे, हिस्ट्री हॉल में भी, तो हमें याद है दादी बाबा के बाजू में बैठती थी तो जैसे एकदम हक से बैठती थी। हमको सामने बैठने में अच्छा लगता था, लेकिन दादी बाबा के बाजू में जैसे कि एकदम वारिस कहो या समानता से दादी ऐसे नशे से बैठती थी कि कौन है। तो एक तो सामने बैठना, भक्ति में सामने बैठते हैं, भले सभी तो बाबा के बाजू में ऐसे स्थूल में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन यहां तो बैठ सकते हैं ना बाबा के बाजू में। आजकल मैं 1969 की होली स्टडी कर रही हूं, तो इसमें बाबा बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं अव्यक्त होने के बाद, कि बाप दादा अव्यक्त क्यों हुए, हमको भी अव्यक्त बनाने के लिए। बाबा बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कुछ भी करते हुए भी अपने मन की स्थिति अव्यक्त स्थिति रखो। तो बाबा को बाबा के साथ में, ऐसे नहीं बाबा ऊपर है और मैं नीचे हूं, बाबा तो पतित पावन है और मैं पतित हूं, अभी हम ऐसे नहीं याद करते हैं बाबा को। हम याद करते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान, शुद्ध आत्मा है, ऑलरेडी है, बनना है नहीं। अब ये भी सिग्नल अपने ब्रेन को देना है, क्योंकि ब्रेन भी समझ के बैठा है कि मैं तो हद की मनुष्य आत्मा हूं। तो ब्रेन आपको जितना आप चाहते हुए भी, ब्रेन आपको घड़ी घड़ी जो पुरानी बातें उसमें लेके जाएगा। कहा जाता है आजकल 97% हम पास्ट में रहते हैं। अगर हम कहेंगे ना हम तो ऐसे थे, हमने ऐसे किया था, हमने ऐसा अनुभव किया था, भले था, लेकिन जितना जितना याद करते जाते हैं उस अनुभव रिइंफोर्स होता जाता है, पक्का होता जाता है, यानी कि फिक्स हो जाता है हमारे अंदर। उससे फिर हम मुक्त नहीं हो पाते। हमारी भाषा भी इस कारण से बदलनी चाहिए, भाषा ऐसी बननी चाहिए हम हैं। ये मैसेज घड़ी घड़ी, ये सिग्नल, ये इशारा, जो भी कहो, हमको घड़ी घड़ी अपने ब्रेन को भी देना है और अपनी आत्मा को भी देना है, अपने मन को भी देना है, बुद्धि को भी देना है, संस्कार को भी देना है। अभी कई बार ये भी कह रहे हम कहते मेरे से ये नहीं होता है, मैं नहीं कर सकती हूं। कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मेरे से नहीं होता है या मुश्किल है। आज नहीं होता है लेकिन कल मेरे से जरूर होगा। भले हमको अपने आप को बहाना नहीं बनाना है, या कि गलत रूप से नहीं बनाना है कि हाँ मैं तो हूं ही, पुरुषार्थ के किए बिना नहीं बन सकते हैं। लेकिन पुरुषार्थ ये साक्षात्कार भविष्य का अभी हमको होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा ने बाबा को बताया, तुम हो, तुम नारायण हो, और बाबा ने कहा नहीं मैं तो नहीं हूं, मैं तो पुरुषार्थ करूंगा ना तब बनूंगा। बाबा ने कहा ऐसा? बाबा ने कहा हाँ मैं नारायण हूं। मम्मा को भी बाबा ने बोला लक्ष्मी बनेंगी, तो मम्मा ने क्या कहा? हाँ। तब से उस घड़ी से मम्मा की स्मृति बदल गई। तो जैसे मम्मा बाबा के लिए है ऐसे हमारे लिए भी है। ये गुप्त बात है वैसे, और बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत गहरी बात है कि हम अपने आप को भी क्या संदेश देते हैं, क्या सिग्नल देते हैं। घड़ी घड़ी चाहे याद की भी बात है, चलो आज याद में मुश्किल लग रहा है कोई भी कारण से, होता है क्योंकि पास की कितने जन्मों की बात भरी हुई है ना, वो बात न जानते हुए न पहचानते हुए भी पैदा हो जाती है, हमारे सामने आ जाती है। कभी कभी समझ में भी नहीं आता है कि क्या हुआ, क्या बात हो गई, तो आज थोड़ी फीलिंग्स ऐसी हैं। भले हो उस समय जानना, उसको पहचानना और उसको उसको आजकल तो ये भी कहते हैं अगर कोई फीलिंग्स ऐसी नेगेटिव आती भी है तो उसको पहचानो और उसको समझो कि हाँ आज ये फीलिंग है, आज है लेकिन कल नहीं होगी, आज है लेकिन आज होते हुए भी मैं उस फीलिंग को अपने आप से अलग समझूं। हम पर्सनालिटी हमारी है, चलो मैं मंदा हूं या चाहे कोई भी है, आपका नाम जो भी है, वो पर्सनालिटी हमारी बनी हुई है, लेकिन आत्मा कौन है? वो पर्सनालिटी तो नहीं है ना, आत्मा उस पर्सनालिटी से अलग है, लेकिन वो पार्ट भी बना हुआ है ना, कि हमने ही तो बनाया है। तो उसको ऐसे भी नहीं चलो तो मैं ऐसी हूं, अपने अवगुण देख के उस अवगुणों पर घड़ी घड़ी जोश लगाते रहना या ध्यान खिंचवाते रहना अपने आप को, और ऐसे आपको अपने समझ आए कि मैं तो ये नहीं कर सकती हूं, ये बन नहीं सकती हूं। लेकिन सिंपल बात बाबा घड़ी घड़ी हमें याद दिलाते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान, ये शुद्ध स्मृति। और ये भी कहते हैं आजकल साइंटिस्ट इस बात का रिसर्च कर रहे हैं कि हमको स्मृति को ऐसे ऊपर उठाना है, इससे शुद्ध स्मृति अनुभव करना है, और इस शुद्धि में हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। हम ऐसे लिस्ट लेके बैठेंगे ना, ये भी संस्कार है, ये भी बदलना है, ये भी बदलना है, ये भी बदलना है, तो कभी नहीं बदल सकेंगे, और ही वो संस्कार पक्के होते जाएंगे। लेकिन हमारी स्मृति, वो जो इंक्यूबेटर वाली स्मृति, शुद्ध स्मृति, पवित्र स्मृति, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति, जितना वो अनुभव करेंगे तो जैसे आत्मा की सफाई अपने आप होती जाती है। और बाबा को भी याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? अगर मैं मंदा अपने संस्कार अनुसार से बाबा को याद, वो चलो बाबा से रूहान करते हैं, वो बात है, वो भी करना है, रूहान करना, ज्ञान की चिटचाट करना, ये भी है, वो तो इस मानव रूप से हम करेंगे। लेकिन अगर एक एक सच्ची सच्ची याद ये है कि मैं आत्मा परमात्मा को याद कर रही हूं, नहीं तो अगर हम अपने संस्कार अनुसार भगवान को याद करेंगे तो क्या होगा? ये भक्ति वाली याद हो जाएगी। तो भगत भगवान को याद करते हैं और हम भगवान को याद करते हैं, उसमें क्या अंतर? लेकिन फीलिंग्स क्या है उस समय? हमारे दिल में, हमारे मन में फीलिंग्स क्या है उस समय? समानता की, शुद्धि की, श्रेष्ठता की फीलिंग्स, उस फीलिंग से, और उस फीलिंग से जैसे हमारा दिल भी साफ हो जाता है, मन भी साफ हो जाता है और बुद्धि भी साफ हो जाती है। तो बुद्धि की सफाई, बुद्धि की बात भी बाबा कई प्रकार से, बाबा कहते हैं श्रेष्ठ बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, शुरूर बुद्धि। जितनी जितनी आत्म अभिमानी स्थिति रहती है उतनी उतनी आध्यात्मिक जागृति रहती है। आज भी बाबा ने कहा आंखें खुली हैं लेकिन जैसे सोए हुए हैं। तो हमें ये बात भी याद है कि हमारी बुद्धि कहां तक जागृत है, और बुद्धि को जागृत रखना माना जो ये आंखें देख रही है ना, एक्चुअली ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, लेकिन जो देखते हैं, जो हो रहा है उसके पीछे उसका सार क्या है, रहस्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो समझना, उसके लिए चाहिए बुद्धि की जागृति। हम जो इन आंखों से देखते हैं उसको ही सच समझ लेते हैं तो हम सोए हुए हैं, हमारी बुद्धि जागृत नहीं है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर की बातों से हम निर्णय करेंगे। लेकिन जो हो रहा है उनके पीछे, और वो समझ आती है जितनी जितनी हमारी बाबा की याद है, जितनी जितनी हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है, जितने जितने हमको अभ्यास साइलेंस का होता जाता है। ये 69 की मुरलियां हैं, उसमें बाबा ने भी कहा है, बाबा ने बहुत ही अच्छी बात सुनाई, याद, बाबा ने कहा सरेंडर किसको कहा जाता है, ऐसे नहीं सफेद कपड़े पहन लिए, सेंटर में रहना शुरू कर लिया या सेवा में हाजी कर लिया तो हम सरेंडर हो गए। बाबा ने कहा श्वास श्वास में बाबा की याद हो, श्वास श्वास में बाबा की याद हो, और उस श्वास श्वास में याद भी बाबा ने कहा उसके उसका सबूत क्या होगा। जो कोई बाबा को इसी प्रकार से याद करते हैं उसका सबूत क्या होगा, तो किसी ने जवाब दिया चीयरफुल, हर्षितमुख। तो बाबा ने कहा हर्षितमुख कौन रह सकता है, जिसकी याद सच्ची है, जिसकी याद प्यार भरी है, ऐसी सरेंडर बुद्धि वाली याद है, उसमें एक गुण होगा। मैं कभी मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सुन के कि याद से क्या आता है, पता है आपको, आप सुनाओ क्या याद से आता है, कौन सा गुण आता है। अगर आपने मुरली पढ़ी है, आजकल में पढ़ी है, तो आपको याद होगा, नहीं तो किसी को भी याद नहीं होगा। खुशी, याद से बाबा ने कहा सहनशीलता आती है, सहनशीलता आती है याद से, सहनशील हर बात में, परिस्थिति में, किसी के संस्कार में, खुद के संस्कार में, सहनशीलता जब आती है तब संतुष्टता आती है। बाबा ने कहा जब संतुष्टता आती है तब हर्षित मुख रह सकते हैं, और वो संतुष्टता कैसी कि जो बात जैसी है इसी प्रकार से उस बात को स्वीकार करना। तब यह हो सकता है जब हमारी अंदर की संतुष्टता है बाबा की याद से, और कोई बात से संतुष्टता नहीं। क्या किया, कैसे किया, किसके साथ किया, कितना किया, क्या मिला, कैसे मिला, और कुछ नहीं, सिर्फ यही बात, बाबा की याद से संतुष्टता। आप एक सेकंड सोचे, हमको अनुभव होता है कि याद से ही संतुष्टता, और उस संतुष्टता से सहन शक्ति, कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो याद हमारी ऐसी हो। और याद तभी रह सकती है जब हमको पहले आत्म अभिमानी स्थिति का पूरा पूरा अभ्यास भी है और उसका अनुभव भी है। और हर एक को ये अभ्यास अपनी रीति से करना है। आप सुनेंगे, क्लासेस सुनेंगे, किसी और का अनुभव सुनेंगे, वो बात अच्छी है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ही अपने आप से अभ्यास करना होगा और उस अभ्यास को समझना होगा पर्सनली। और हर एक का तरीका अलग है। कई लोग कहते हैं कि वैसे हम कहते हैं ना मेडिटेशन सिखाते हैं, तो कई कहते हैं कि हम मेडिटेशन सिखाते ही नहीं हैं। बाहर आप जाओ, कोई चाहे मंत्र से हैं या माइंडफुलनेस है, किसी प्रकार से वो एक एक स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन सिखाते हैं। ऐसा करो, ऐसे बैठो, ऐसा देखो, ऐसा समझो। हम क्यों नहीं सिखाते ऐसे? क्योंकि वास्तव में हम बाबा हमें मेडिटेशन नहीं सिखाते हैं। बाबा क्या सिखाते हैं हमें? बाबा हमें याद सिखाते हैं और हम भी याद सीखते हैं। और याद सिखाई जाती है क्या? कहने का मतलब इसलिए है, मतलब ये है कि आत्म अभिमानी स्थिति भी हम हर एक को अपने खुद के अभ्यास से इसको अनुभव करना है और इसको समझना है, ताकि आप किसी को भी फिर वो अनुभव करा सके। इसीलिए सुनने का अभ्यास अच्छा है। आजकल तो कितने क्लासेस, कितनी मुरलियां, चाहे अव्यक्त मुरली है, साकार मुरलियां हैं, चाहे दादियों के क्लासेस हैं, चाहे भाइयों के क्लासेस हैं, बड़ों के क्लासेस हैं, कितने क्लासेस हैं, कितना सुनेंगे, फिर सुन के क्या करेंगे? सुनने के लिए तो अभ्यास अच्छा है, लेकिन कम रस से सुनेंगे? ये भी भक्ति में क्या, भक्ति में कितना घंटों घंटों पर बैठ के सुनते रहेंगे, ऐसे कहते हैं ना, भक्ति में तो पाठ करते रहेंगे, गीता पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, सुनेंगे, मंत्र जपते रहेंगे, घंटे भर बैठते रहेंगे लोग और बैठे रहेंगे। और आजकल विदेश में तो खास कहते हैं कि अगर किसी को भी कोई आप सुनने की असर हो, हाउ लॉन्ग, 20 मिनट से ज्यादा कोई भी अटेंशन ज्यादा दे नहीं सकते हैं। 20 मिनट्स, इसके आगे जो सुनेंगे वो यहां से गया, यहां से बाहर। 20 मिनट आजकल हम खास बाबा का जो रिट्रीट सेंटर है उसको अभी नए से शुरू करना है, तो उसके लिए हम बहुतों से चर्चा कर रहे हैं कि आप क्या समझते हो कि जो भी भाई बहने हैं, बीकेज हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं, वीआईपीज हैं, जो आए हुए हैं, उनको बहुत उम्मीद है कि स्थान जो है बाबा का रिट्रीट सेंटर लंदन में, वो बहुत कुछ सेवा कर सकता है। तो हम उनको पूछते हैं कि आप क्या समझते हो कि हम क्या सेवा कर सकते हैं और आगे, तो बताएं क्या सब सुनाते हैं। यही कि हम जानते हैं सब कुछ, अभी सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमको क्लासेस लंबे लंबे नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि भले 20 मिनट के लिए कुछ ऐसे विचार दो या कोई नवी बात सुनाओ, भले ऐसी बात सुनाओ, लेकिन फिर उसको उसके बाद हमें टाइम दो, हमको साइलेंस में जाने का मौका दो, हमको अंतर्मुखी बनने का मौका दो, ताकि हम बैठ के उस पर सोचे, उस पर अभ्यास करे, उस पर लिखे और फिर एक दूसरे के साथ चर्चा करें। तो आप भी, इसलिए मैंने कहा ना, आज आप सबने मुरली सुनी, आपस में क्या चर्चा की? सबसे चर्चा करने से पहले अंतर्मुखी, बाबा ये जो 69 की मुरलियां भी हैं उसमें भी बाबा ने कहा कि सारा दिन अगर अंतर्मुख रहने का अभ्यास रहेगा तब जाके दूसरे दिन का अमृत वेला अच्छा होगा। सारा दिन अंतर्मुखता का अभ्यास, यानी कि इस इंक्यूबेटर के अंदर, इस गुफा के अंदर, इस लेबोरेटरी के अंदर बैठना। बाबा इसको गुफा भी कहते हैं, अंतर्मुखता की गुफा। कितनी अच्छी बात है। पुराने जमाने में साधु संत गुफा में जाके बैठते थे, अभी भी हिमालय में जाके गुफा में बैठते हैं। हमको कहां भी नहीं जाना है, हमको इसी गुफा में बैठना है। गुफा में क्यों बैठते हैं? कई बार विदेश में तो बेसमेंट के अंदर स्थान होते हैं, फ्लैट्स होते हैं या कमरे होते हैं, तो कहते हैं कि जो बेसमेंट के अंदर कमरे होते हैं ना, उसमें मेडिटेशन रूम रखना चाहिए, क्योंकि वहां ये जो अंदर से अंदर बैठने का जो है, उसमें अंदर अपने अंदर अंतर्मुख होने का बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। तो गुफा तो वहां पहाड़ियों में होती है, लेकिन हमारे पास गुफा नहीं होती है, लेकिन वो बेसमेंट होते हैं। तो हमें यहां भी बेसमेंट बनाना है, ताकि इसके अंदर जाके, गुफा अंदर जैसे कि सब बंद है और हम अकेले बैठे हैं वो शुद्ध वातावरण के अंदर। तो कल आप क्या अभ्यास करेंगे, कल आप सोचना इस बात के ऊपर कि अंतर्मुख हम कहां तक रह सकते हैं। बाबा ने दादियों को भी एक बारी, बड़ी दादी ने सुनाया, यज्ञ के दिनों की बात है कि कितने समय आप आत्माभिमानी स्थिति रख सकते हो। दादी कुमार का पास हुई 45 मिनट आत्माभिमानी स्थिति उन दिनों में, उसमें तो उसके बाद तो दादी कितने घंटों पर रख रही होगी। तो कुछ समय पहले मेरा प्रोग्राम था वहां, तो एक जो बहन इंटरव्यू ले रही थी, तो उसने मेरे को पूछा, उसने कहा तुम नियरली 40 साल से ज्ञान में हो, तो तुमने कहते हैं वैसे 10,000 घंटे आप कुछ अभ्यास करेंगे ना तो वो अभ्यास नेचुरल हो जाएगा। तो उसने मेरे को कहा तुम 40 साल से ज्ञान में हो तो 10,000 घंटे तो तुमने योग किया होगा, मेडिटेशन किया होगा। तो मैंने कहा 10,000 घंटे हम बैठे होंगे, लेकिन उसके अंदर कितना हमारी बुद्धि योग में लगी वो किसको पता। 10,000 घंटे बैठे तो होंगे, ऐसे स्थूल बैठे होंगे। तो योग में भी जब हम बैठे तो ऐसे नहीं कि हर बारी जैसे कि दोबारा योग लगाना पड़े, लेकिन योग का अनुभव यानी कि याद का अनुभव एक कंटिन्यूअस अनुभव होना चाहिए। यानी कि बैठे तो याद में बैठे, लेकिन याद में से उठे तो भी ये नहीं कि चलो याद पूरी हो गई, अभी याद करने की जरूरत नहीं है, काम धंधे में बिजी हो गए और फिर जब दोबारा याद में बैठेंगे तब भी बार याद करेंगे। लेकिन दोबारा जब याद में बैठे तो बीच में भी ये लिंक बनी रहे, तो ऐसा लगे कि याद जैसे कंटिन्यूअस है। हम भी ये अभ्यास करते हैं, ऐसे नहीं कि हमारा भी हो गया, लेकिन ये अभ्यास हमारा चलता रहे। क्योंकि ज्ञान के अंतिम पहला पाठ क्या है, आत्मा समझकर बाबा को याद करना, और अंतिम पाठ क्या है, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो भी बातें इसमें दखल डालती हैं उसको फिनिश, उसको छोड़ना ही है, और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है ना। तो कल अंतर्मुखता की गुफा में रहने का अभ्यास करना और फिर बताना, ठीक है। ओम शांति।